نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما لي لا أعبد الذي 23वां पारा है और हम सूरत यासीन की आयत नंबर 13 से शुरू करेंगे। वत्रिब लहुम मसलन असहाबल करियति इस जा अहल मुरसलून, और आप इनके सामने एक ऐसी बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने इनके पास दो को भेजा सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को छुटलाया, फिर हमने तीसरे से ताईद की सो इन तीनों ने कहा हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। इन लोगों ने कहा तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम निरा झूठ बोलते हो। इन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाजे तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बास ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुँचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ लगी है, क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाते हो। और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा मेरी कौम इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और राह रास्त पर हैं। वमाली अलाबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैही तुरजाऊन, और मुझे क्या हो गया कि मैं उसकी इबादत ना करूँ जिसने मुझको पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊँ कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा न पहुंचा सके और न वो मुझे बचा सके, फिर तो मैं खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबके रब पर ईमान ला चुका हूँ। कीलत खुलिल जन्नत काल या लैत कौमी यालमून, इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म होता। बिमा गफर अली रबी वजालनी मिनल मुकरमीन, कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। ये थी आयत नंबर 13 से 27, 13 to 27। इन आयतों का टॉपिक है मार तो दिया खैर ख्वाही न छीन सके। एक खूबसूरत दाईये दीन का किरदार है इन आयत में। एक की बजाय दो, दो की बजाय तीन लोग एक जगह बस्ती की रहनुमाई के लिए भेजे गए। इससे क्या पता चलता है कि बाज दफा एक अकेला शख्स वो काम नहीं कर सकता, जब कोई दूसरा शख्स उसके साथ मिल जाए तो वो करे। एक अकेला 2-11, और दो के साथ जब तीसरा मिला तो कुव्वत मिली। फर्क पता चल रहा है इनफिरादी कोशिश और इज्तमाई कोशिश में। एक एक इंसान की कोशिश होती है और एक गिरोह की टीम की कोशिश होती है। दोनों का फर्क पता चल गया इन आयात में, आयत नंबर 14 में, कि कैसे अल्लाह ताला ने एक की बात दूसरे को रखी। क्योंकि आप देखिए कि जहां भी बहुत गुमराहियों का माहौल होता है ना, तो वहां लोग दीन की दावत देने वाले को कबूल नहीं करते। वो अकेला बेचारा ऐसे ही होता है जैसे तेज हवाओं के अंदर एक टुनमुन दरख्त खड़ा है। लोग उसको प्रेशराइज कर देंगे, इधर से चलाएंगे हवा उड़ेगी, उसके कुछ पत्ते झड़ जाएंगे, अच्छा अच्छा नहीं ये भी कर ले कर ले, अच्छा ये भी उतार दे, अच्छा आज के दौर में ये भी ठीक है। यदि एक बंदा दीन पे आता है ना और पूरा माहौल दूसरे माहौल में रंगा होता है तो वो बंदा बहुत सख्त खतरों में होता है। और आप देखिए कि जब कभी आंधियां चलती हैं तो आप देखा करें कि जो अकेले अकेले दरख्त होते हैं ना वो गिर जाते हैं, और वो दरख्त जो एक झुंड की सूरत में सड़कों के किनारे होते हैं वो नहीं गिरते। क्यों? कि वो गिरने लगते हैं तो दूसरे उसको सपोर्ट दे देते हैं, उसके पत्ते उस पर गिरते हैं, वो फिर वापस आते और झूलते रहते हैं। यहाँ पहली चीज तो हमें इसमें पता चली इज्तमाई और इनफरादी कोशिश का फर्क। अगर आप अपने माहौल में तन्हा है ना, कहीं खानदान में भी आप अकेली हो सकती हैं। बाज लोग कहते हैं मैं तो अपने खानदान में फर्स्ट टाइम पहली औरत हूं जो कुरान सीख रही हूं। आप अगर अकेली है ना तो अगर आप सरवाइव करना चाहती हैं तो आप अपने साथ कोई दूसरा मिलाइए जल्दी से, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने खानदान के लोगों में, शौहर को, घर में, बच्चों को, फौरन अपने आप को किसी दूसरे के साथ जोड़े। क्यों? कि आप अकेले गिर जाएंगे। इसीलिए तो आप देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम का साथ मांगा था ना, क्योंकि फिरौन का वो जोर बहुत ज्यादा था, अकेले मूसा की बात सुनते ही ना, और हालांकि कत्ल भी किया हुआ था उनके कौम की तरफ से। तो लिहाजा पहली चीज तो आपको ये करनी चाहिए, खुद जमे, फर्स्ट थिंग। वो हमने मिसाल देखी थी पीछे, खुद जमेंगे तो तभी अल्लाह की मदद के जीरो लगेंगे ना। दूसरी चीज यह है कि आप अपने साथ दूसरे किसी को तैयार करें, वो आपके घर का कोई भी शख्स हो सकता है, खानदान का भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 2 से 3, 3 से 4 होंगे। जब किसी दोस्तों में एक दोस्त चेंज होती है ना, ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, उसमें एक चेंज होती है ना तो वो लुड़खड़ाती रहती है, वो हर वक्त अपना दुपट्टे पीछे कर रही होती है, बहाने के साथ, नहीं वो असल में ऐसे ही आगे आ गया था। फिर खौफ आता है, फिर आगे करती है, फिर थोड़ी देर बाद फिक्र होती है, दोस्त देख रहे हैं, फिर उस सर झनक के फिर दुपट्टा नीचे उतारती है। वो लुड़खड़ाते कदम जो हिजरत करने वालों के होते हैं, जैसे कोई दीन की तरफ आते हैं ना, तो यही हालात होते हैं ना कि शुरू में उसको वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो ऐसे लोगों की कैफियत क्या होती है कि फिर वो पनप नहीं सकते। अल्लाह तआला ने एक के साथ दूसरे और दूसरे के साथ तीसरे को क्या किया कि अपनी कुव्वत को बढ़ाओ। अगर बातिल के साथ हमने लड़ना है ना, तो हमें अपनी कुव्वतों को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए फिर मुसलमान उम्मत के अंदर इज्तमाईयत, इत्तेहाद। जब आप छोटी छोटी कोशिशों में और छोटे छोटे हिस्सों में मुसलमानों को बांट देंगे ना, सेक्ट्स में बांट देंगे, मस्जिदों को अलग कर देंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ टूटेगी। आप उन सारी टूटी हुई मस्जिदों को जोड़ के एक बड़ी मस्जिद बनाएं, लोगों को भी खौफ आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ मुसलमान रहते हैं। बहरहाल, दूसरी चीज जो हमने इस हिस्से में देखी वो खैर ख्वाही की देखी। आप अपने दिल में लोगों के लिए खैर ख्वाही पैदा कर लें, सिंसियरिटी। एक वो काम होता है जो आप फर्ज समझ के करते हैं, बोझ समझ के करते हैं, जिम्मेदारी समझ के करते हैं, उसमें और नसीहत वाले और खैर ख्वाही के काम में यही फर्क है जो इस शख्स के बारे में रिवायात में आता है कि ये हबीब था। अल्लाह के नबी ने इसके बारे में फरमाया, ये वो शख्स है जिसने जीते जी भी लोगों की खैर ख्वाही की और मरने के बाद भी खैर ख्वाह रहा, लोगों ने मार दिया। देखिए, हमें तो दीन के ऊपर आने पर लोग फूल पहनाते हैं, लोग तो हमें इज्जत देते हैं, लोग तो हमें कुर्सियों पर बिठाते हैं, हमें इतनी इज्जत देते हैं, और उस दौर में लोग मार दिया करते थे। तुम काम करते हो, शूट इट, खत्म करो, रास्ते से हटाओ, मार दिया, मर गया। अब जरा सोचे, किसी को मारा हो, अब उसकी रूह जो होती है, उसने अल्लाह से एक दुआ की, ए अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया, कीलत खुलिल जन्नता, कहा जन्नत में जाओ, दुनिया खराब की है ना इन्होंने तुम्हारी, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए मैंने जन्नत ऐसे सजाई हुई है। फरमाया, अच्छा, अल्लाह ताला इतनी प्यारी जन्नत मुझे दी है। फौरन फिर वही खैर ख्वाही आ गई, खाला या लैता कौमी, काश मेरी कौम जान ले कि मेरे रब ने मेरी कैसी कदर की, मैं हक पे था, मैं बातिल पे नहीं था। उसने ख्वाहिश की कि मेरा रब, ए अल्लाह तू मेरी कौम को बता कि मैं बहुत अच्छे हाल में हूँ, ताकि मेरे सच्चे हाल को देख के फौरन अभी पलट जाएं उस रास्ते से जिस पे चल रहे थे। हम होते तो क्या कहते, हाथ दिखा जरा उनको, पता चले मैं कितना सच्चा था। सच्चा मोमिन मर भी जाता है ना, तो उसके दिल से खैर ख्वाही नहीं जाती। उसको यकीन होता है कि मैं जीते जी जो काम नहीं कर सका, मेरे बाद कोई इन कामों को और अच्छे तरीके से कर दे और बात वहां भी पहुंच जाए जहां अभी नहीं पहुंची। वो ये नहीं कहता फुलां बस्ती के लोग, उन्होंने मुझे झुटलाया था, खबरदार, मैं वसीयत करके जाता हूँ अपने शागिर्दों को भी कि उस तरह मुंह ना करना। कहता नहीं, अगर अल्लाह के नबी ने ये खैर ख्वाही ना की होती ना ताइफ वालों के साथ, कि जिसे उन्होंने पत्थर फेंके, पहाड़ों का फरिश्ता आया और कहा, अल्लाह के नबी अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों पहाड़ों को जोड़ दूं और ये पूरी ताइफ की बस्ती पिसके रह जाए। दूसरे फरिश्तों ने आके आपसे फरमाइश की थी कि अगर आप चाहें तो हम इनको नीस्तो नाबूद कर दें, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इनको कुछ ना को हो सकता है इनकी नस्लों में से कोई ऐसा आ जाए जो इस्लाम कबूल कर ले। और आपको पता है अल्लाह के नबी की ये दुआ कहाँ लगी, ये हम सबको लगी हुई है, कहाँ, मोहम्मद बिन कासिम ताइफ से थे, फातह सिंध। आज अगर आप एक आजाद सिंध में सांस ले रही हैं ना, तो वो अल्लाह के नबी के सब्र की वजह से था। अल्लाह से मदद मांग ली कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुज़ाफ़ा कुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अला नास, लेकिन बददुआ नहीं की। ये खैर ख्वाही जब दिल में आती है ना, फिर अल्लाह ताला आपकी बात के अंदर असर डालता है। तड़प, जब हम सिर्फ काम के लिए काम कर रहे हैं ना कि मुझे करना है, मेरा नाम हो, देखिए दीन का काम करने के बाद भी इंसान इतने खतरों में होता है कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ सोच के कभी, कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि कल लेने के देने पड़ जाए। वो नाम की बातें ना हो सिर्फ, वो काम की बातें ना, वही बात फिर वही याद करें अनवर काश्मीरी साहब की, कि सारी जिंदगी सारी तबलीगों का मकसद क्या था, कि दुनिया के दूसरे मसालिक पे फिकह हनफी को लागू कराना। तो अल्लाह ना करे कि हमारा ये हाल हो। आगे देखते हैं आयत नंबर 28 से, वमान सलना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुनजिलीन। इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न इस तरह हम उतारा करते हैं, वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी, यकायक वो सब के सब बुझ कर रह गए। या हसरतन अली बात, ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। ये थी आयत नंबर 28 से 32, 28 से 32। इसका उनवान लिखिए, हक वाले को छुटलाने के बाद क्या होता है। इन आयात में उसी का तस्करा था। کسی کے پاس کوئی حق آئے اور وہ اس کو نہ مانے، یہ اس کے پورے اختیار میں ہے، لیکن حق کی دعوت کو چھٹلانے کے بعد بندے کے ساتھ جو حالات ہوں گے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور وہ بس کبھی چیخ اور چنگھاڑ کی صورت میں ہوتے ہیں، اور کبھی وہ طوفان نوح کی صورت میں ہوتے ہیں، اور کبھی وہ قوم عاد پہ چلائی جانے والی ہواؤں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ پچھلی ساری قوموں کے حالات دیکھتے جائیں تو آپ کو اس بات کی دلیل ملتی جائے گی کہ وہ لوگ جو حق اور سچ کو جھٹلا دیں پھر وہ دنیا میں زیادہ دن رہ نہیں پاتے۔ اب کچھ نشانیاں کائنات میں سے۔ وآیت لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین میں ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا اور جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خود ان کے نفوس ہوں، خود وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقرر رہا ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، اور یہ ہے مقرر کردہ غالب علم اللہ کا، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر ایک پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 33 سے 40، 33 سے 40۔ ان آیتوں کا ٹاپک ہے نشانیاں ہر سو پھیلی ہیں۔ آنکھیں تو کھولو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان نشانیوں سے کم ہی سبق لیتے ہیں۔ ان آیتوں کے سننے کے بعد عمل کی بات یہی ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ یہاں ایک چیز کو ہائی لائٹ کروانا چاہوں گی، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ چاند کی بات ہے، چاند کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں، یہ وہ نشانی ہے جس کے لیے آپ کو کسی سیٹلائٹ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، صرف اگر آپ ایک مہینہ چاند کو دیکھنا شروع کر دیں ہر رات کے چاند کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چودھویں کا چاند ایک کھجور کی مڑی ہوئی ٹہنی یعنی پتلے سے چاند کی شکل میں کیسے ڈھلا، کوئی ہے نا جس کو موڑ رہا ہے؟ تو جو چاند اتنا بڑا ہو کہ اللہ کے حکم پہ چھپ جاتا ہے کچھ دن تک، تو ہم اپنے چاند جیسے چہروں کو اللہ کے لیے کیوں نہیں چھپا سکتے؟ اس کائنات سے اطاعت سیکھنی ہے۔ سورج اتنا گرم ہے، غصے سے بھرا ہوا ہے، اللہ جب اس کو کہتے ہیں ڈاؤن اٹ، نیچے ہو جاؤ، وہ نیچے ہو جاتا ہے۔ ہم جب غصے میں آتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتے؟ آپ اس کائنات کو اپنا استاد بنا لیں، آپ کے مزاج میں بہت ٹھہراؤ آنے لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب دوسری قسم کی نشانیاں جو آیات تذکیر ہوتی ہیں، بالآلہ اللہ، اللہ کی نشانیاں، بڑے بڑے دنوں کی نشانیاں، اسی میں سے ایک کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، حضرت نوح کی کشتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ وہ بچائے جائیں، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی کہ جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ خود چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة، انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جن کو آپ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اہلہم یرجعون، اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ کیا ہوگا؟ ونفخ فی الصور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو سور کے پھوکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ زبان پہ کیا بات ہوگی؟ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، कहेंगे हाय हाय हमें हमारी ख्वाब गाहों से किसने उठा दिया। क्या कहा जाएगा? हाजमा वादर रहमान वसदकल मुरसलून, यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और लोगों ने सच सच कह दिया। कैसी होगी ये? इनका नतिल्ला सईहतं वाहिदा, ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। और क्या होगा उसके बाद? अब इसके बाद आप इमेजिन करें। फल यौम ला तुज़लम नफ्सुन शैया, बस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा, तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ उन्हीं कामों का जो कुछ तुम किया करते थे। चंद सेकंड सोचें, जब हमें ये जुमला सुनने को मिलेगा तो हमारे सामने कौन से अमल होंगे, जो सोचे हुए थे या जो किए हुए थे? अच्छे अमल करने वालों का क्या मामला होगा? इन्ना असहाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून, जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश हैं। वो और इनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और भी वो कुछ जो वो तलब करेंगे। मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इनको सलाम कहा जाएगा। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। हम सूरह यासिन कितनी कसरत से पढ़ते हैं और पढ़ते मरने वालों पे, और ना पढ़ने वाले को समझ आ रही होती है, और जो जा रहा है अगर उसके सामने हकीकत खुल भी गई है तो अब अमल का वक्त खत्म। मुझे किसी की बात बहुत अच्छी लगी, उनको किसी ने कहा मैं आखिरी दिन के प्रोग्राम में आने का प्लान कर रही हूँ, तकमीलुल प्रोग्राम पे आऊंगी। अच्छा, मैंने भी ये बात सुनी, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं लोगों को ज्यादा बॉदर नहीं करती जो कोई कर रहा है। लेकिन किसी ने उनको जो बात कही मैं उस पर बाद में भी सोचती रही। उन्होंने कहा कि देखिए आप आखिरी दिन ना आए, आप उससे भी एक आध दिन पहले आ जाए, क्यों कि सुनने के बाद अगर आपका दिल चाहेगा कि मैं और सुनूं तो आपके पास कोई एक दिन और दो दिन मौका तो हो, अगर आप आखिरी दिन आएंगी तो आपको हसरत होगी। मैंने ऐसे नहीं सोचा था। मुझे उनकी बात से बहुत खुशी हुई कि जब हमें कोई नेमत आखिरी दिन मिलती है ना, फिर हम कहते हैं हाय मैंने मिस कर दिया, आई मिस्ड इट। थोड़ा सा कुछ हिस्सा होता, कुछ ही मैं ले लेती, जो मिल गया उसके आगे ले ले। पूरी रोटी नहीं मिलती, आधी तो मिल जाती है ना। इसी तरह क़यामत के दिन इंसान को हसरत होगी अपने आमाल पे, और इंसान देखेगा कि मैंने क्या किया, अल्लाह ताला ने कहाँ क़यामत के मनाजिर को उठा के हमें जन्नत में सैर करा दी। आयत नंबर 41 से 58 थी ये। आप लिखिए जन्नत के बाद की एक तस्वीर, अभी हमने आधी देखी है असल में, अब दूसरी तस्वीर देखते हैं। وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, ए गुनागारो आज तुम अलग हो जाओ। ये है दूसरी तस्वीर। क्या इनको कहा जाएगा? अब एक एक जुमले को अपने दिल पे महसूस करें। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे कौल और इकरार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही इबादत करना, सीधी राह यही है। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते? हाजिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तूअदून, यही वो दोजख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। अपने कुफर का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। क्या होगा? अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तश्हदु अर्जुलुहुम, क्यों? बिमा कानू यक्सिबून, हम आज के दिन इनके मुंह पर मोहरें लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और इनके पांव गवाहियां देंगे इन कामों की जो वो करते थे। देखिए जरा अपने हाथों को, अपने कदमों की तरफ देखिए, कितना सजाते और कितना संवारते हैं, कितनी फिक्र है हमें इनकी, कल क्या होगा? ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे, अगर ये किसी पे ना हक उठे तो ये हाथ हमारे खिलाफ होंगे। नहीं कहेंगे इनके कितने हमने मैनीक्योर और पेडीक्योर कराए, कितनी क्यूटेक्सिस लगा के हमने इनको संवारा, कितनी देर इनको गर्म पानियों में डुबोया, कितने घंटों इनकी केयर पे लगाए। ये बोलेंगे अल्लाह हाँ ये उठे थे हराम पे, ये गलत चीज़ों को टच किया था इन उंगलियों ने, ये कदम गए थे गलत तरफ, ये जुबानें बोली थी लोगों के खिलाफ गलत। जिसको ये शऊर आ जाए उसकी जुबान किसी के बारे में कोई एक ना समझी का जुमला बोल सकती है? सिर्फ कमेंट, सिर्फ सुनी सुनी बातें, सिर्फ दूर से उड़ती हुई बातें। और जब इंसान के पास सच्चा कलाम आता है ना, तो उसको सबसे ज्यादा डर जिससे लगता है वो इंसान का अपना आप होता है। अल्लाह करे कि अब हमारा वो वक्त आ चुका हो, हम सबसे ज्यादा अपने से डरने वाले बन जाए। फिर इंसान को सबसे ज्यादा फिक्र लगती है तो अपनी लगती है, अल्लाह करे अब हमें अपनी फिक्र लग जाए। इंसान सबसे ज्यादा खैर देने वाला होता है तो अपने आप को देने वाला होता है, اللہ ہمیں یہ خیر اپنے آپ کو دینے والا بنا دے. آگے کیا ہوگا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى عُيُونِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ, اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے, پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے, لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا. یعنی وہ آنکھیں جو ہدایت کے راستوں سے دور تھیں, اللہ ان کی آنکھوں کو دنیا میں بھی روشنیوں سے محروم کر سکتا تھا. پھر اندھوں کی طرح ٹابک ٹوئیاں مارتے, راستہ نہ دکھتا. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے, پھر نہ وہ چل سکتے اور نہ لوٹ سکتے. یہ صورتیں, اگر آئینہ ہو تو ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں. ابھی نہیں دیکھ سکتے تو بعد میں دیکھیے گا, جب کنگھی کر رہے ہوں گے. جب بھی آپ کو آئینہ دیکھنا پڑے تو ضرور دیکھیے گا اور پوچھئے گا کہ یہ چہرہ جس کو اتنا سجانے اور سنوارنے کے لیے میری ساری کوششیں تھیں, کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ مسخ نہ ہو, مسخ کر دیا جائے گا, آنکھیں ہٹ جائیں گی, کان ہٹ جائیں گے. اللہ اگلے حصے کو پیچھے کر دے گا, پچھلے کو آگے کر دے گا. اور دنیا میں بھی نیکی کو چھوڑ کے شکلیں مسخ ہوتی ہیں, ان کے اوپر سے چمک ختم ہو جاتی ہے, کوئی اس کے اندر خیر نہیں آتی. آگے ایک جگہ میں نے آپ کو کوٹ کرانی تھی چیز, کہ شراب کا ایک اثر جو انسان کی جسم پہ آتا ہے نا, وہ یہ کہ اس کے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں. آپ کبھی سیدھے سادے مسلمان بزرگوں کو دیکھیں اور ایسے نان مسلم بڑوں کو دیکھیں کہ جو اتنی زندگی خرافات کا شکار کر چکے ہوتے ہیں, آپ کو دونوں میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. جتنا انسان اپنی زندگی میں نیک ہوتا ہے نا, اس کا بڑھاپا اتنا خوبصورت ہونے لگتا ہے. اور جو انسان زندگی میں جتنا غلط چیزوں میں پڑتا ہے نا, اس کا بڑھاپا جو ہے وہ دیکھنے سے کراہت آتی ہے. بعض دفعہ میں دیکھتی ہوں جو لوگ ساری زندگی پلکنگ کرواتے ہیں, تو بعد میں ان کی یہ جو اسکن ہوتی ہے نا, یہ پوری لٹک کے آنکھوں کے اوپر آ جاتی ہے, پورا جسم نچ جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب انسان کیئر نہ کر سکے, بعض تو ماشاءاللہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوڑتے اپنا آپ صحیح رکھنا. لیکن بہرحال یہ کہ جب انسان یہ کام نہ کر سکے, یہ تھی آیت نمبر 59 سے 67. ان کا ٹاپک ہے کچھ تو اپنے بارے میں سوچو. دوسروں کو سوچتے رہتے ہیں, اب اپنے آپ کو سوچنا ہے. پھر فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ, اور جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں, اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں, کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے آیت نمبر 68. اس کا ٹاپک لکھیے بڑھاپا, سیکنڈ چائلڈ ہوڈ. بڑھاپا دوسرا بچپن, انگلش میں بڑھاپے کو سیکنڈ چائلڈ ہوڈ کہتے ہیں. انسان دوبارہ بچہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایسے دن کے آنے سے پہلے اس کا شعور دلا رہے ہیں کہ جب ہم بالکل بوڑھا بن چکے ہوں گے, کوئی کشش ہمارے اندر نہیں رہے گی, الٹ پھیر ہو چکا ہوگا ہماری زندگی کا, ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی, سننا چھٹ چکا ہوگا, آواز لڑکھڑائے گی, گردن جھکنے لگے گی, کمر میں ایک دوہرا پن آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم انسان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جاتے ہیں, پھر بھی نہیں سمجھتے. تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک لمبی عمر کے بعد تمہیں کہاں لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ, پھر دوبارہ بچے بن جاتے ہو. آگے پھر آئے گی اس کے اوپر بات. اگر صرف ہم اپنے ارد گرد رہنے والے بوڑھوں کو دیکھ لینا اور اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیں, کل میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, تو ہمارا دل جو ہے نا وہ بدلنے لگے. آپ پوری سورہ یاسین کا ایک مزاج سمجھ رہے ہیں, کتنے تدبر کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک نشانی پہ بات کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں. پیچھے نبیوں کی بات تھی جنہوں نے بات کی, لوگوں نے چھٹلایا کہ تم منحوس ہو, تم بہت برے ہو, کیوں؟ تمہاری تعلیمات سے ہمارا فن ختم ہو گیا, ہماری زندگی کی رونقیں کم ہو گئیں, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں دکھا دی کہ دیکھو یہ سورج اتنا بڑا ہے, اللہ کے آگے جھک رہا ہے, یہ زمین جو اپنی اصل سے بے نور ہے, اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو روشنی آتی ہے. اسی طرح دل کی بے نور جگہ پہ جب ہدایت کا نور چل جاتا ہے نا, تو تبدیلی آتی ہے. اور میں سوچتی ہوں کتنی زیادتی ہے جب ہم ان صورتوں کو صرف مرنے والوں کے لیے پڑھیں, جینے والوں کو ان چیزوں کی ضرورت تھی, اور ہم اپنے آپ کو وہاں لانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورج جو اتنا بڑا ہے نا, یہ 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے. یعنی آپ پچھلے اگر اپنے یہاں بیٹھنے کے وقت کو سیکنڈز میں لیں اور اس سیکنڈز کو 20 کلو پر مائل سے لیں, تو آپ اس پورے سولر سسٹم میں آپ اتنا سفر کر چکے ہیں پچھلے تقریباً 1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں. اتنا بڑا سورج رب کی طرف گھومتا ہے, ہم کیوں نہیں گھومتے؟ اور آپ کو پتا ہے شاید حیرت ہوگی سن کے, آج کی سائنس نے تو کہا یہ بے جان چیزیں بھی گھوم رہی ہیں. یہ جو جس ٹیبل پہ آپ اپنی چیزیں رکھ کے بیٹھے ہیں نا, یہ صبح سے آپ کو تو سیدھا لگ رہا ہے لیکن یہ موو کر رہا ہے. کلو یس بہون, گھوم رہے گھوم رہے. ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ تم کیوں سوئے ہوئے ہو؟ تم کیوں سائے ہون نہیں بنتے؟ تمہاری زندگی میں جمود کیوں آ گیا؟ تم کیوں اس زمین کے ساتھ چلے گئے اور پھر सूर फूकने का मंजर दे दिया, तुम्हारे विल पावर के ख़त्म होने का वक्त ख़त्म। एक घंटी बजती है ना, एंड डन डन डन, छुट्टी। क्या जो चॉइस दी थी ना, इख्तियार, वो ख़त्म। और हम इस सूरत को उस वक़्त पढ़ते हैं जब हमारी घंटी बज चुकी होती है। अब नतीजे का इंतज़ार करो, अब देखो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, उसके ऊपर गौर करो। वमा अल्लमनाहु शेरा, न हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए और न ये इसके लायक है, वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़ेह कुरान है। क्यों? लियुनज़िरा मन काना हय्यन व यहक्कल क़ौलु अलल काफिरीन, ताकि वो हर उस शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा है और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए। क्या वो नहीं देखते कि हमने अपनी हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए चौपाए भी पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए, और इन मवेशियों को हमने इनका ताबे फरमान बना दिया, जिनमें से बास तो इनकी सवारियाँ हैं और बास का गोश्त ये खाते हैं। इन्हें इनसे और भी बहुत से फायदे हैं और पीने की चीजें भी, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं, हालांकि वो इनकी मदद की ताकत ही नहीं रखते, लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाजिर बाश लश्करी हैं। बस आपको इनकी बात गमनाक ना करे, हम इनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। अवलम यरल इंसान, क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने इसको नुतफे से पैदा किया, फिर यकायक वो सरीख झगड़ालू बन बैठा, और इसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, मैं युखिल एजाम वही यरमीम, कौन है जो इन गली सड़ी हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा? इसको जवाब दो, कुल युहयिहिल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, आप कह दीजिए इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया। क्यों? इसलिए कि वहुवा बिकुल्ली खल्क़िन अलीम, वो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, वही तो पैदा करने वाला दाना और बीना है। कुदरत कितनी है उसकी, ताकत कितनी है, इसका जवाब आ गया। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकून, वो जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसको इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, तो वो हो जाती है। कुन फयकून। فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون, बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। ये थी आयत नंबर 69 से 83 69 से 83। इन आयत के टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है मवेशी तुम्हारे लिए मुसख़र हैं, तुम रब के आगे झुक जाओ। अल्लाह ताला ने जानवरों की मिसाल पेश कर दी। आपको कभी मौका मिले ना, ईद की छुट्टियों में चलें, आप ज़रूर कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनाएं अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ या अपने दोस्तों, जो भी लोग मिल के जा सकें, किसी फॉर्म में जाएं, फिर एक एक गाय भैंस के सामने खड़े होके उसको इन नज़रों से देखें, गर्दन झुकी हुई, सर नीचे, आजिज, और जो खाएगी उसको भी देखें और जो साथ आप लेके जाएंगे अपने खाने के उसको भी देखिएगा, और जो चारे को खा के वो दे रही है इस कायनात को वो देखिएगा, और जो हम इतनी आला चीज़ों को खा के हम कायनात को दे रहे हैं वो भी देखिए। हम ट्रैश देते हैं लोगों को, गंदगी देते हैं, बू देते हैं, उसको डिस्पोज करने में इतना माल लग जाता है, और जानवर हमारी वही डिस्पोज चीज़ों से बनी हुई चीज़ें खा के बेहतरीन दूध देती हैं। आपको पता है कि शुक्र किसको कहते हैं? कि गाय को थोड़ा चारा भी दिया जाए तो वो दूध ज़्यादा दे। और इंसानों के लिए शुक्र क्या है? कि अल्लाह उसको थोड़ी भी नेमतें दें तो वो इबादत और अल्लाह की हुक्म को मानना ज़्यादा करें, इताअत ज़्यादा करें। इसी को देख लेंगे कि हम कितना शुक्र करें। दूसरा टॉपिक है इसका, तुम उसके कुन के मुहताज हो। इसको हाईलाइट कर लें, आयत नंबर 82 है ये। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकून, जिसको अल्लाह ताला के साहिब कुन का यकीन आ जाता है ना, फिर उसकी ज़िंदगी में मायूसी नहीं रहती। वो कोई भी काम करता है या कोई चीज़ मुश्किल सोचता है तो क्या सोचता है? कि अल्लाह मैं तेरे कलमाए कुन की मुख्ताज हूँ। तो कुन कहेगा बीमारी सेहत में बदल जाएगी, तो कुन कहेगा नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी, तो कुन कहेगा गुमराह शख्स हिदायत की तरफ चल पड़ेगा। ए अल्लाह तो कुन कह दे, तो हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह जो बातें अभी तक हम दीन की नहीं सीख सके या जिन बातों को सुनने के बाद अभी तक अमल नहीं कर सके, आज तो उस पे कुन कह दे, और उस कुन को फिर सुन के हमें उसको मानने की तौफीक भी अता फरमा। बड़ी अच्छी सी दुआ करें सूरत यासीन के पूरे होने पे कि अल्लाह ताला हमें तदब्बुर की तौफीक दे। चलिए अगली सूरत को शुरू करते हैं, सूरत सफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है सफ बांधने वाले फरिश्तों की, फिर पूरी तरह डांटने वालों की, फिर जिक्र अल्लाह की तिलावत करने वालों की। यकीनन तुम सब का माबूद एक है। कौन? आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की तमाम चीजों और मशरिकों का रब वही है। हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हिफाजत की सरकश शयातीन से। आलम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से वो मारे जाते हैं और भगाने के लिए और इनके लिए दायमी अजाब है। मगर जो कोई एक आध बात उचक ले जाए तो फौरन ही इसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। ये थी आयत नंबर 1 से 10, 1 to 10। इसका उन्वान है फरिश्तों से तंजीम सीखो, और दूसरा टॉपिक है इसका अल्लाह ने जीनत रखी मगर बा मकसद। पहली बात करूंगी इस सूरत के नाम और इन आयात सवाफात पे। सवाफात सफ़े बांधने वाले। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर फरिश्तों की इस खूबी को रखा कि फरिश्ते सफ़े बांधते हैं, और सफ बांधने की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि एक पूरी सूरत 28वें पारे में सूरत सफ के नाम पे मौजूद है। हमें ये बात क्या सिखाती है कि महज़्ज़ब कौमें जो होती हैं ना, वो सफ़े बांधती हैं। देखिए, सफ़ बांधना, कितार बनाना, रोज में रहना, ये इस बात की दलील है कि आप दूसरे को उसका हक देना चाहते हैं। जो बंदा मुतकब्बिर होता है ना, जो हर जगह अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहता है, वो सफ़ की केयर नहीं करता। जब कौमों का मिजाज बिगड़ता है ना, तो वो बजाय इसके कि सफ़े बांध के दूसरों को उनका हक देकर खुश हों, वो इस तरह की बातें बोलते हैं कि देखा, पीछे से गई थी, पहले लेके आ गई हूँ, मुझे दो, मैं लेके आती हूँ। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो इतनी देर इंतज़ार करती। मैंने एक कोनी मारी, अगला पीछे हो गया, मैं आगे चली गई। आपने कोनी मार ली, किसी को नहीं पता चला, वो शरीफ होगा, उसने कहा आप आगे आ जाए, लेकिन कल क़यामत के दिन उस कोनी का जवाब देना पड़ेगा। हकदार का हक मरता है। हम देर से आते हैं और बाद में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पहले आने वालों का हक मारते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ इतना खूबसूरत सबक दिया कि जिसको अगर आज की उम्मत मुस्लिम अपनी ज़िंदगी में ले आए तो लोग इसकी कदर करें। और मैं सोचती हूँ कि जब लोग खाना काबा में नमाजियों की सफ़ों को देखते होंगे तो दिल पे एक रोब तो तारी होता ही होगा, लेकिन ये रोब ज़ायल हो जाता है जब आप मुसलमानों से उनका इंटरेक्शन होता होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम फरिश्तों की तरह सफ़े बांधा करो, वो बांधते तो हम क्यों नहीं बांधते। दूसरी चीज़ सितारों की बात थी, इन्ना ज़य्यन्ना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। ये सितारों का एक दूसरा मकसद है, तख्लीक का, खूबसूरती के लिए पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती भी रखी है ना, उसके अंदर भी एक मकसद है। इसी तरह औरत को अगर खूबसूरती दी है ना, तो मकसद है कि उसके शौहर को उसमें कशिश महसूस हो। कोई भी जीनत इख्तियार करे ना, तो एक लम्हे के लिए जरूर इस जुमले को याद कीजिएगा, क्या इस जीनत का कोई मकसद है। बात तो हमारी जीनत पे असल चीज से ज्यादा उठ जाता है। मिसाल दूंगी कि आप खाना पकाते हैं, खाना पकाने में खर्चा आता है, कोई बात नहीं क्योंकि आप खाएंगे, लेकिन आप उसको सजाने में सिर्फ इतना खर्च कर दें कि सिर्फ उसको उठा के बाद में साइड पे कर देना है कि ये आपकी आंखों को अच्छा लग रहा था, तो वो कोई खूबसूरती नहीं होती। आप आर्टिफिशियल चीज़ों को लगाने की बजाय अगर कोई फ्रेश वहाँ चीज़ लगा दें जो बाद में कोई खा भी ले, तो इंशाल्लाह उससे आपको भी फायदा होगा। आगे देखते हैं आयत नंबर 11 से 11। इन काफिरों से पूछो कि क्या इनका पैदा करना ज्यादा दुश्वार है, या इनका जिन्हें इनके अलावा पैदा किया। हमने इंसानों को लेसदार मट्टी से पैदा किया, बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है और ये मस्खरापन कर रहे हैं। और जब इन्हें नसीहत की जाती है तो ये मानते ही नहीं, और जब किसी मौजजे को देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जादू ही है। क्या जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डी हो जाएंगे, फिर क्या सचमुच हम उठाए जाएंगे? क्या हमसे पहले के हमारे बाप दादा भी? जवाब दीजिए हाँ हाँ, तुम जलील भी हो जाओगे। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम यन्ज़ुरून। وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے ان کو دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جائیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے، وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے، یہ سوال جواب سننے کے قابل ہیں، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے اور کچھ ہمارا زور تو تم پر نہ تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود ہی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ کون گناہگار؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ، نہیں نہیں، بلکہ نبی تو حق یعنی سچا دین لے کر آئے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 11 سے 39، 11 to 39۔ ان آیتوں کا ٹاپک ہے قیامت کو جھٹلانے والے اس دن جھٹلا نہ پائیں گے۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، یہ حق لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، جھٹلانے لگتے ہیں اور بڑی بڑی حقیقتیں جو کل سامنے پیش آنے والی ہے اس کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بعض دفعہ کچھ ایسے مناظر رکھ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوسروں کے کہنے پہ بھٹکتے ہیں، کل قیامت کے دن اس چیز پہ حسرت کا اظہار کریں گے کہ ہم تمہارے پیچھے کیوں لگے۔ اور یہ بات پیچھے بھی کئی جگہ گزر گئی، صرف اس وقت اب قرآن پاک کے اتنا پڑھنے کے بعد ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا ایک بڑا خوبصورت انداز یاد رکھیے گا کہ ابتدا میں خوب زور والی آیتیں آتی ہیں، حکم والی، احکامات والی، صرف سورت بقرہ میں 1000 حکم ہے، پھر سورہ آل عمران میں کچھ ہوتے ہوتے شروع کے 10 باروں میں خوب حکم دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں اخلاقی تربیت کی باتیں بہت ساری آتی ہیں، مورلز۔ پہلے حصوں میں آپ دیکھیں گے تو عقائد پہ بات ہوتی ہے، پھر جو بیچ کے 10 پارے ہوتے ہیں نا اس کے اندر اخلاقیات، سوشل تھنگز، معاشرتی چیزیں، جس کو ہم پیچھے سورہ نور وغیرہ میں پڑھ چکے۔ یہ جو آخری حصہ شروع ہوتا ہے نا، اس کے اندر زیادہ تفکر، تدبر، بہت کم کچھ آپ کو حکم ایسا ملے گا کہ جس کو آپ کو ماننا پڑے، بلکہ پچھلی معلوم باتوں پہ ہی غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور میری نظر میں یہی ایک خوبصورت انداز ہے قرآن پاک پڑھنے کا کہ جب ہم ان پاروں پہ ہوں تو پھر زیادہ سے زیادہ تدبر کریں۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے تو میرا دل ایسے محسوس میں کرتی ہوں کہ جیسے پکڑا ہوا ہے، جیسے ایسے لگتا نا کہ اب تھوڑا سا ہلیں گے نا تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی۔ ان لفظوں میں حسن بہت ہے، آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، صوتی حسن ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کی باتوں سے زیادہ تدبر کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پہ تدبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ برے لوگوں کا اور